वही 7-8 साल और ऑफलाइन पहले पढ़ाने के बाद सडनली जब ये सोचा कि इस तरफ यूट्यूब की तरफ जाना है, तो बिल्कुल कोई टेक्निकल आइडिया नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, सेटअप कैसे होगा, लाइटिंग कहाँ से आएगी, है ना, ना कैमरा, मतलब मुझे याद है शूटिंग भी फोन के कैमरा से होती थी, और आप माइक ले रहे हो, 2 दिन तो मुझे यही समझ नहीं आया, अच्छा मोबाइल के साथ माइक कैसे काम करेगा।
So, hey guys, this is your boy, अग्रवाल, और आज हमारे चैनल पे यार आई हैं नेहा मैम हसलर्स बे पे आने के लिए। सबसे पहले शुक्रिया। और यहाँ पे आए हो काफी सारे बच्चे होंगे जो कि नेहा मैम के बहुत भाई जिगरी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा फॉलो करते होंगे। आज काफी सारे सवाल हैं जो कि मैम से हम पूछने वाले हैं और मैम उन सबके आंसर दे रही होंगी। हमारी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन लिस्ट बनाई है, देख रहे होंगे यार जर्नी में सारा स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा। मेन मोटिव ये रहेगा कि इस पूरे 40-45 मिनट या एक घंटा जितना भी ये जाता है उससे आपको 4-5 चीजें सीख पाओ। हम यार पॉइंट डाउन भी कर देंगे उन्हें वीडियोस के अंदर, पर जितनी भी चीजें हुई यार उन्हें लिखें जरूर, और वरना आस्था चैनल की तरह भूल जाएंगे, रात के डिनर की तरह भूल जाएंगे कि क्या खाया था। तो हाय मैम कैसे हैं? और
हेलो, सो आई शुड से हाय माय आर्मी एंड थैंक यू सो मच अमन फॉर कॉलिंग मी हियर, इट इज डेफिनेटली एन ऑनर। एंड बिल्कुल आप ही भाषा में कहते हैं, चलो फोड़ते हैं।
मैम सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे काफी सारे बच्चे हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं आपके एकदम बचपन से, जैसे कि थोड़ा बैकग्राउंड की और वाइब आया हमें। हमने स्कूलिंग करी, उसके बाद हम कॉलेज में गए, ऐसा कौन सा पॉइंट था स्कूल या कॉलेज जब आपने सोचा कि ओके यार टीचिंग में मेरे को जाना है? जैसे पेरेंट्स का होता है यार इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, ठीक है, तो आपके कब आया नहीं यार ये नहीं मैं टीचिंग में जाऊँ?
मुझे ना एक चीज लगती है जो लोग बहुत बोलते हैं ना, फॉलो योर पैशन। मुझे लगता है यू डोंट गेट टू चूज योर पैशन, प्रोबेबली द पैशन चूजेस यू, लेकिन आपको उसके लिए अपना, जैसे मैं कहती हूँ, आंख कान नाक मुंह खुला रखना होता है। सो दिस इज वन थिंग प्रोबेबली, ये वाइब मुझे बहुत अर्ली इन लाइफ आ गई थी कि यार अपनी शायद नॉलेज इम्पार्ट करने में या किसी को समझाने में जो मुझे एक पीस, एक खुशी मिलती है ना, वो शायद कुछ और नहीं दे सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट, शायद मैं इंजीनियरिंग कर भी लेती तब भी शायद वो होता ना मीन रिवर्टिंग, वापस वहीं आ जाती, टीचिंग में ही आ जाती। तो बिल्कुल यार 11th में मैंने जब एंटर किया था वही पीसीएमबी वाले कॉम्बिनेशन के साथ थी, तो ऑफ कोर्स फैमिली से भी ये चीज आई इंजीनियरिंग कर लो।
पीसीएमबी वाले लोग मेरे को लेजेंड लगते हैं, बहुत बहुत मुश्किल होता है चार मेन सब्जेक्ट साथ में लेना।
नहीं मतलब वो था कि पसंद थे ये सब्जेक्ट्स इसके लिए थे, बट वही कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग कर लो इंजीनियरिंग कर लो, बिकॉज सबको ना एक सेट रूट दिखता है कि अच्छा कर लो फिर प्लेसमेंट मिल जाएगी एंड आप लाइफ में सेटल हो जाओगे। पर मेरा ये सवाल रहता था फिर होगा क्या, क्या मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी हैप्पी। इनफैक्ट मेरे दोनों पेरेंट्स दे आर इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, दे हैव बीन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वो सब, तो एक बीच में बहुत वो था कि जहां मुझे बैंकिंग के बड़े पेपर भरवाए गए अब वो क्लियर भी हो जाता था टुवर्ड्स द एंड, तो मैंने इंटरव्यू में ही जाना बंद कर दिया। ऐसे यार ये करूंगी क्या करके जब माई हार्ट लाइज देयर। तो एक चीज है कि वेन यू फॉलो अ पाथ जो कोई आपको कोई और दिखा रहा है ना, तो उसमें अगर आप फेल करते हो ना तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और कहीं आप अच्छा कर भी गए एट द एंड ऑफ द डे शायद वो फिर भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। इसलिए आई गेस वो फॉलो करो जहां आपका हार्ट लाई करता है। सो या
मैम इसमें जैसे काफी बच्चों को एक जनरल डाउट किया आ जाता है कि ठीक है मेरा तो बहुत कुछ करने का मन करता है पर वो चीज करूंगा तो पता नहीं रेवेन्यू वाइज में स्टेबल होऊंगा नहीं होऊंगा। तो पापा ने तो पैसे दिए पढ़ने के लिए, ट्वेल्थ तक के यार बच्चे हो और अभी तक कुछ ऐसा स्किल प्रिपेयर नहीं करी, तो अभी तो कॉम्पिटेटिव करना चाहिए। कॉलेज के अंदर आके आपके पास 3 से 4 साल होते हैं जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं, तो उस दौरान वो कैसे बैलेंस करेगी यार, कॉलेज की पढ़ाई भी है प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करे या साइड हसल, वहीं पे बच्चा डाउट मारता है, डर लगता है उसे फर्स्ट स्टेप लेने में।
तो मुझे यहाँ क्या लगता है ना कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉन्गर विजन के लिए सोचना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप मेडिकल, आप जो भी करना चाहते हैं, क्या वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन हो रहा है ना? तो वो आपको देखो करके तो देखना पड़ेगा. एंड आई गेस आप जितना अर्ली ऑन लाइफ में ये करते हो, खुद को क्वेश्चन करते हो, ट्राई करते हो, गिरते हो, उठते हो, आई गेस तभी आप सीखते हो और धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होने लगती हैं आपके सामने. तो यस, साइड हसल इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया. एंड आपको पता नहीं, शायद आपको वहीं आपका पैशन चमक जाए. तो डेफिनेटली इसको तो ट्राई करना बनता है.
क्योंकि इन्हीं के साथ आप पूरा समय मेजोरिटी अपना लाइफ लगा रहे होंगे. एक चीज है मैम, क्या करे, एक प्रश्न होता है कि लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, तो दोनों ठीक है, एक ठीक है या?
तो देखो मैं यहाँ बोलूंगी, ये हमको भी पता है, इंडिया के हर गली कोने में आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे. जैसे मैं अगर अपने एग्जांपल से यहाँ लूं, पर हाउ आई ट्राई टू डिफरेंशिएट इज कि आई ट्राई टू डू समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल फॉर द चाइल्ड. अब ये क्यों होता है, जब शायद योर हार्ट लाइज इन वॉट यू आर डूइंग, तो क्योंकि ये चीज समझ आती है कि वो फिर आपको अपना काम ना काम नहीं लगता, वो ऐसा लगता है दिस इज समथिंग व्हाट आई लव. तो आई गेस जो मेरी आज सिचुएशन है, आई कैन वेरी क्लियरली से कि ये दोनों चीजें मेरे लिए सेम ही है. आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव. तो आई गेस जब ये चीज अलाइन हो जाती है ना, तो इस वक्त तो मेरे लिए आई वुड से कि एब्सोल्युटली ये सेम ही चीज रहेगी. जैसे कई बच्चे हैं, फॉर इंस्टेंस बच्चे बड़े जैसे भी लोग कहते हैं ऑनलाइन आजकल बड़ी इन थिंग है, यूट्यूब पर कोई चैनल खोल लो, ये कर लो, वो कर लो. आई गेस दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. मुझे लगता है कि आपका पैशन कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है. नाउ यू शुड आस्क योरसेल्फ कि हाँ यार अब मैं इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाऊँ. क्योंकि जब आप अपने पैशन को अपना काम बनाते हो तो आपको यू नो अल्टीमेटली आपका हार्ट वहीं पे लाई करना शुरू कर देता है. सो आई गेस मेरे केस में तो ये चीज डेफिनेटली है ही.
मैम इसमें जैसे हमने कहा पैशन को उस पे लेकर हैं, पहला बच्चे का डाउट आ जाता है पैशन कहाँ मिलेगा, कौन से कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ओके यार आप जिस चीज को पकड़ो उसे 2 महीने के लिए करके देखो, थोड़ा स्किन के अंदर घुसो, फिर आपको चीज पता चलेगी. फिर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि उन्हें और क्लियर हो, मान लो मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे कुकिंग बिजनेस चलाना है, मेरे पास आज के दिन आज स्टूडेंट पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ. मेरे पास 2 अप्रोच है, पहला कि मैं खुद का एक ठेला खोलूँ, उस ठेले पे मैं काम करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, कोशिश करूँ कस्टमर बने, 4-5 महीने में थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू पुल आउट होना स्टार्ट हो. पर उस ठेले को बनाने के लिए मुझे लगता है कि यार आपको पहले पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए थोड़ा, राइट, और आपको लोगों में शायद मार्केटिंग भी करनी पड़े, एक आध छोटा लड़का और साथ में रखना पड़े, आपको काम कराने पड़ेंगे. पर अगर हम दूसरी अप्रोच लिए कि चलो शुरुआत पहले सोशल मीडिया से करते हैं, क्यों ना हम दूसरों के ठेले पे जा जाके उन्हें बोलें कि यार वाह क्या ऑमलेट बना है, वाह क्या चाय वाला है, वाह क्या छोले भटूरे बनते हैं, तो आई गेस वो आईबॉक्स काफी सारी अट्रैक्ट हो रही होंगी उनके पास,
राइट.
और वो आईबॉल्स एक बार अट्रैक्ट हुई, 2 साल कंटेंट डाला, तो आजकल सोशल मीडिया भी आपको थोड़ा थोड़ा पे करता है एज अ स्टूडेंट.
बिल्कुल,
वहां से आपको कुछ रेवेन्यू मिल गया, सिग्निफिकेंट नहीं होता, बहुत कम होते हैं इनिशियली, पर चलो ठीक है कुछ मिला. हो सकता है 3-4 साल बाद आपके पास अब एक अच्छा ऑडियंस बेस है, एंड अब बाकी बड़े रेस्टोरेंट आपको बुला रहे हैं कि यार एक बार हमारे यहाँ भी खाना आके खाओ जरा, तो आपको फ्री में खिला भी रहे, साथ में आपको शायद हो सकता है कुछ टोकन अमाउंट भी दे रहे हो. और अब 3-4 साल बाद जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हो या सेकंड लास्ट फाइनल ईयर में हो, तब आपके पास इतना कैपिटल है कि ओके अब मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, ठेला नहीं मैं रेस्टोरेंट भी शायद लीज पे लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं लोगों को बता सकता हूँ मैंने करा है, और मेरे पास ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है, मेरे को मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्च करना,
राइट.
और क्यों ना अब मैं लोगों को बोलूं अरे वाह मैंने यहाँ पर ये छोले भटूरे स्टार्ट किए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ये सेकंड अप्रोच में बच्चे को सोशल मीडिया पे पहले चढ़ा हो, एंड उसके बाद मतलब उसने पहले देख लिया मुझे कुकिंग में जाना है,
exactly.
और उसने 0 रुपी के साथ somehow वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि माँ बाप ठेले के पैसे नहीं देंगे, और पता चल गया ठेला खोल रहा है, तो भाई पहले तो एक ठेला सर पे खोलेंगे.
right.
तो ये चीज पे आप क्या कहेंगे?
तो तो आई गेस आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यहाँ पे. तो जैसे मैंने भी बोला कि अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो कुछ तो हल्का सा एक आपके दिमाग में होगा ना कि अच्छा मुझे कुकिंग में जाना है, मुझे ओपन करना है, मेरा सिंगिंग पैशन है, मेरा टीचिंग पैशन है, जो भी है कुछ तो वो जुड़ रहा होगा हमारे दिमाग में जिससे आप ओपन करोगे. एंड बिल्कुल आज हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक जिस तरह का रहा है, वी फोकस टू मच ऑन कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, बट आई गेस वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो एक बच्चे के दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है. एंड आई गेस इसी को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहा है. तो बिल्कुल जैसे कोई समर ब्रेक है तो एक समर जॉब पिक जाना, या इस तरह का जैसे आप कह रहे हो किसी और के पास जाकर ये चीज़ देखना कि ये सही है, ये ऐसे है. सो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत मायने रखता है. एंड ये आपको इवेंचुअली आपकी कॉलिंग पर के पास भी लेकर जाएगा. सो यस,
एक और पॉइंट है मैम जो इसमें मेरे को लगता है कि आप आज के दिन कोई भी चीज करो पर उसे जो मार्केट में लोग कर रहे हैं उसे समहाउ अलग यूनिक तरीके से करो.
बिल्कुल,
आप बाकियों से अलग होने चाहिए वरना एग्जिस्टिंग प्लेयर आपको बीट करता रहेगा हमेशा. आप यूनिक हो गए, अब ये आपका गेम है. तो हमेशा देखो कि आप औरों से डिफरेंट कैसे हो, इधर बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट. तो इस मॉडल पे हम ध्यान रख सकते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी दिमाग से स्लिप हो गया.
आई गेस जो आपने कहा ना इधर बी द फर्स्ट, देखो अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिलता है लेकिन यू कैन ओनली इवॉल्व, आई मीन यू कैन ओनली सस्टेन इफ यू कीप इवॉल्विंग. वो तो चीज है, आपको किसी से किसी से इंस्पायर होके या अपने काम में हर वक्त बेटर होना होगा. एंड जैसे आपने कहा हाँ बिल्कुल भी मी टू नहीं बनना किसी का कि यू जस्ट गेट इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड होना सही है पर किसी के काम को एज इट इज कॉपी कर लेना है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है. तो डेफिनेटली आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी लाइन बोलती हूँ, इफ यू डोंट इवॉल्व यू विल डिसॉल्व इवन इफ यू वर द फर्स्ट वंस टू डू इट. तो वो डेफिनेटली है.
इसमें मैम एक चीज और मुझे लगता है आजकल बच्चों को फेलियर्स मिलते हैं पर वो अकेडमिक्स में मिल रहे हैं.
राइट,
98 सोचे थे 95 आ गए, ऊपर की रैंक सोची थी पर नीचे की रैंक आ गई.
राइट,
बैकलॉग बन रहा है पर रियल लाइफ फेलियर्स बच्चे एक्सपीरियंस उतना नहीं कर पाते. जैसे कि मैं रिसेंटली किसी बहुत अच्छे फाउंडर से मिला था तो उन्होंने कहा अमन जो भी आप चीज स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर तो फेल होगा वो, जो भी आपका बेबी होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट में मिस्टेक करोगे, आप लोगों से मिलोगे, आप सीखोगे कि नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं, आपसे 10-10 15 साल बड़े लोग आपसे बात करेंगे तब आप धीरे धीरे समझोगे अच्छा ऐसी चीजें होती हैं. तो वो फेलियर काफी नेसेसरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा अगर आप समर कैंप वगैरह में जाते हो तो थोड़ा इंटरेक्शन आपका अकेडमिक से हटके बाहरी वर्ल्ड से होना स्टार्ट होता है. और इसी प्रकार से आप पैसे के लिए नहीं, चाहे मिले ना मिले अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे यार आपको एक्सपोजर मिल रहा है.
Right.
तो वो चीज जरूर करो साथ में उसके. आपको हो सकता है यार ऑन द स्पॉट ना दिखें कि यार मेरे को इससे 5,000 मिले या 50,000 मिले पर वो लॉन्ग रन में आपके दिमाग में स्टैक होता जा रहा है. आपको नहीं पता 3 years डाउन द लाइन कहाँ पे आप उनमें से एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हो. तो
ये तो बिल्कुल ऐसे है कि बीज डालते जाओ कभी ना कभी तो ऊपर डेफिनेटली आएगा. एंड द वे आई लुक एट इट इज कि बेसिकली क्या है ना कि हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं पर वो हमको शायद दिखते नहीं है. आज अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूँ लोगों को दिखता है. हाँ मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, लोग ज्यादा टाइम शायद कंप्लेन करने में या दूसरे को ऑब्जर्व करने में ज्यादा लगाते हैं. अच्छा कि आज अमन ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, यहाँ पहुंच गया, बट वो शायद लोग वो हसल नहीं देख रहे हैं जो उसने अंदर करी, उसने उसके पीछे करी, जो सैक्रिफाइसेस करे, जो ठोकरें खाई, जो उठे. मतलब बिल्कुल जब जैसे अगर हम YouTube चैनल की अगर मैं अपनी बात करूं, ना एडिटिंग का पता, मतलब बिल्कुल नॉन टेक पर्सन, ना एडिटिंग कैसे होती है, शूटिंग कैसे होती है, कैसे थंबनेल बनेंगे, क्या होगा, वो हर दिन एक नया चैलेंज है ना. लेकिन सिर्फ एक चीज होती है, यू मेक अ चॉइस नॉट टू गिव अप. तो वो धीरे 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 चीजें, एंड ये जब तक करेंगे नहीं वो समझ आएगा नहीं. क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरे कॉलेज में किसी ने एक बहुत सही लाइन बोली थी कि थ्योरेटिकली आप चीजों को जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप पूल में जाओगे नहीं, आप स्विमिंग सीखोगे नहीं, तो वो आपको जाना पड़ेगा, वो मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी. आई मीन एंड इट्स नॉट अबाउट कि मिस्टेक्स करनी है या नहीं, आप उनसे सीख रहे हो जल्दी से और फिर आगे बढ़ रहे हो.
ये चीज मैम आपने एकदम सही कही. और ये मैम इनफैक्ट आप में फेलियर मिलते भी हैं, जैसे ठोकर ही हुई है, शब्द सुनने में आपको भारी लगते होंगे पर इस प्रोसेस में मजा आने लग जाता है
right.
क्योंकि आपका जो ईगो होता है वो आपको अपने पड़ोसी के साथ नहीं लड़ाना, आपको अपना ईगो इस चीज के साथ लड़ाना है कि यार मैं गिव अप तो नहीं कर सकता
hmm.
अगर गिव अप हो रहा होगा तब उस टाइम मैं ही नहीं होऊंगा
exactly.
पर गिव अप नहीं हो रहा होगा तो आप हर दिन हसल मारते हो और उस हसल को आप चैलेंज में देखते हो. जैसे एक चीज का ये ऊपर वाला भी देखता है कि यार आप कितनी कठिनाइयों से जूझ पाते हो, अगर जूझ पाते हो तभी आप वर्थ इट हो उस पर्टिकुलर टाइटल के. तो जितने भी यार आपके, मैं स्टूडेंट लाइफ को कीचड़ लाइफ बोलता हूँ, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है राइट, इट्स अप टू यू कि हम यार अभी 2-3 महीने मेहनत लगा के, या आपके पास 1-2 साल है मेहनत लगा के उस कीचड़ से बाहर निकल जाए, वरना आप उसी में स्टिक रह जाओगे. कॉलेज में आपको हसल मारनी पड़ेगी, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिली तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स ये बाकी जगह वो हसल 3-4 साल की लगानी पड़ेगी आपको. इट्स बेटर हम पहले मार के बची हुई लाइफ को एंजॉय करें और ग्रोथ में इस्तेमाल कर रहे हूँ. मैम आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या रहा है अभी तक का?
अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ग्रेटेस्ट चैलेंज नहीं, शायद चैलेंजेस रहे होंगे. ठीक है, तो अगर सपोज अगर मैं यहाँ चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, सबसे मतलब एक्चुअली तो बिगिनिंग से ही जैसे शुरू हो गया कि जब पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ या इंजीनियरिंग कर लो, एक शायद सिक्योरिटी रहेगी, तो वहां से एक सॉर्ट ऑफ फाइट करना कि मुझे ये टाइम दे दो क्योंकि मेरा दिल यहाँ नहीं है टाइप्स, तो वो डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है वो आई गेस. लेकिन इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ इट, आप डेफिनेटली उसमें कोई, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आपने कह दिया मुझे ये करना है, उसको करो, फिर जुनून दिखाओ कि मुझे करना है. टेक्निकल चैलेंज ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि शायद 7-8 साल ऑफलाइन पहले पढ़ाने के बाद सडनली जब ये सोचा कि यू नो इस तरफ यूट्यूब की तरफ जाना है, तो बिल्कुल कोई टेक्निकल आइडिया नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, सेटअप कैसे होगा, लाइटिंग कहाँ से आएगी, है ना, ना कैमरा, मतलब मुझे याद है शूटिंग भी फोन के कैमरा से होती थी और यू नो आप माइक ले रहे हो, 2 दिन तो मुझे यही समझ नहीं आया, अच्छा मोबाइल के साथ माइक कैसे काम करेगा, फिर समझ आया अच्छा कुछ ऐप डाउनलोड करी जाए एंड उस तरह से वो करा जाए. सेकेंडली जैसे मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी फुल टाइम जॉब में थी, तो जैसे जैसे आपकी थोड़ी विजिबिलिटी बनती है तो वो फिर एक चैलेंज आपके उस तरफ से भी आता है कि यू नो आपके कोलीग्स वो पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, वो आपके जैसे मैंने स्कूल जॉब से शुरू किया तो वो चीज प्रिंसिपल तक पहुंचती है, मैनेजमेंट तक पहुंचती है कि ये मतलब इसको इतना टाइम मिल कहाँ से रहा है, कर क्या रही है ये. हाँ वो होता है कुछ लोगों को ट्राई टू लाइक पुल यू डाउन कि क्यों टाइम का चैलेंज, क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं ये करना है ना, तो वो है कि यार परफेक्ट टाइम तो किसी भी चीज का आएगा नहीं, आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना. जैसे अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूँ, मुझे याद है मैं सुबह 4 बजे उठ के शूटिंग करती थी क्योंकि मुझे ये 7 बजे के अराउंड निकलना होता था अपने काम के लिए, तो मुझे होता था कि यार शूटिंग कर लूँ, एडिटिंग करके एटलीस्ट उसको रेडी कर लूँ. अब एक बार शूटिंग करी वो सब सही, जब एडिटिंग करने बैठी वो लास्ट के 5-7 मिनट में वॉइस लैग आ गया, लिप सिंक ही नहीं हो रहा, अब क्या करो. तो यही है कि गिव अप तो करना नहीं है, तो 2 घंटे दिए उसका सोल्यूशन ढूंढा कोई, जैसे यू नो आपने कोई सॉफ्टवेयर निकाला और उससे वॉइस अपनी एक्सट्रैक्ट करके उसको थोड़ा यू नो मूव किया कुछ मिली सेकेंड से, फिर ओरिजिनल क्लिप को म्यूट करके उसको उस पर चढ़ाया. मतलब फॉर अ पर्सन जिसने सिर्फ मैथ पढ़ाई है उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, लेकिन शायद ये अंदर से था नहीं यार इसको कैसे छोड़ दे. तो चैलेंज आपको हर दिन मिलेगा कुछ ना कुछ. शुरू में तो आप देखो ना वॉचिंग कितने होते थे, है ना, वो मतलब मुझे याद है जब लाइव वाला फॉर्मेट आया था 30-40 लोग देख रहे होते थे शुरू में, और मेरे ख्याल से 3-4 तो घर के ही लोग होते थे कि यार कुछ तो हम भी ऐड कर दें. पर आई गेस वही है कि आपको डटे रहना अपने काम पे, वो तो करना ही पड़ेगा.
मैम जैसे कभी कभी हिट पड़ते हैं, हैवी हिट पड़ सकते हैं, या फिर आपको लग रहा हो हैवी हिट पड़ने वाला है, तो उस टाइम मेंटली आदमी कैसे प्रिपेयर हो कि यार ओके अब वापस कैसे उठे। क्या हम ये देखते हैं कि यार पहले भी मैं एक बार गड्ढे में गिरा था और मुझे उस गड्ढे में नहीं रहना, मुझे ऊपर उठना है, या फिर हमारे कुछ पर्सनल फैमिली टाइप रिलेटेड कुछ चीजें अंदर से आती हैं कि नहीं यार मुझे चीजें को उठानी है, या आपका कोई बड़ा पर्पज होता है जिस जो आपको अट्रैक्ट करता है, ये सब क्यूमुलेटिव मिल गए। आपके केस में क्या है कि गड्ढे में गिर गए तो आप कैसे निकलेंगे वो चीज?
तो देखो अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी लाइफ में आते ही आते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पर शायद मेरे बारे में एक चीज आई वुड मायसेल्फ से अच्छी है कि आई डोंट स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग। अब एक चीज हो सकती है कि मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों से नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से जुड़ी हुई, तो यार आप ना शायद एक ऐसी लाइफ भी देखते हो जहाँ आपको एक एहसास होता है कि बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में एंड आप कितने ब्लेस्ड हो, है ना। यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट कि यू नो यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, आपको वो छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझ में आती है और आपको लगता है यार मैं इस चीज पे दुखी हो रही हूँ कि शायद मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँ। लाइफ इज सो टफ। इनफैक्ट आई हैव बीन थ्रू अ फेज इन लाइफ जहाँ आई हैव लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज टू मी एंड वेरी यंग। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। अब आप या तो फिर सोच लो कि अब यही है, अब यही मेरी लाइफ है, यही पिटी एंड एवरीथिंग, यू गेट इनटू दैट लूप, या फिर यह कि ठीक है यार अब जितना जाना था नीचे चले गए, इट्स टाइम टू बाउंस बैक। तो वो आई गेस कि एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा। एंड जब मैं वही बोल रही हूँ ना, जब ऐसे लोगों से शायद मैं जुड़ी हुई हूँ तो दैट ऑल्सो समवेयर कीप्स दिस थिंग गोइंग इन माई माइंड कि यार आ जाएंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, पर किसी की लाइफ में हो जाएगा, सो दैट पुल्स मी आउट डेफिनेटली।
ना मैं अपनी लेक्चर देने जाते हैं तो उसके पीछे माइंडसेट क्या होता है, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 5, 4, 3, 2, 1, तो उस टाइम क्या सोच रहे होते हैं क्योंकि मेरे आगे कुछ इतने हजार बच्चे हैं उनको मुझे पढ़ाना है, या फिर कभी कभी बस एक माइंडसेट होता है जैसे मैं सेशन में जाता हूँ तो उससे पहले कुछ चीजें इमेजिन करता हूँ, तो आपका क्या है वो चीज?
मुझे ना एक चीज लगती है कि मैं बहुत ही एवरेज पर्सन हूँ, बहुत ही एवरेज टीचर हूँ। अब मैं ये बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो एक बहुत इंटेलिजेंट टीचर होगा खुद, है ना, मैं शायद बहुत ही एक यू नो अमंग दी अबव एवरेज स्टूडेंट्स रही हूँ। एक बहुत इंटेलिजेंट जो टीचर होगा ना, वो कई चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, है ना, वो उनको लग रहा होगा ये तो ऐसे ही है, वो समहाउ आपकी नॉलेज की फ्लॉन्टिंग नजर आती है। जब शायद मैं सेशन में जा रही होती हूँ, मुझे होता है कि क्योंकि मैं खुद ये चीजें झेल चुकी हूँ, ये स्ट्रगल मैंने देखी है, तो मुझे somehow वो लगता है कि अच्छा यार ये बच्चा कहाँ अटक रहा होगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर मेरे सेशन पर आए तो वो कुछ डेफिनेटली सीख के जाए। एंड एज आई ऑलवेज से दो रूल्स है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यूट्यूब पर बहुत चॉइस है, कोई नहीं रुकेगा, एंड यूजफुल ऑफकोर्स आपके यू नो व्यूअर के लिए होना चाहिए कि जो कहीं आ रहा है वो अल्टीमेटली सीखने के लिए आ रहा है किसी एजुकेशनल वीडियो पे, तो वो चीज डेफिनेटली रहती है। एंड या ये दो थॉट्स के साथ मैं डेफिनेटली जाती हूँ कि मतलब कुछ तो ऐसा करना है जो हर बच्चे को एटलीस्ट मैसिव मेरे मैसिव को साथ लेके चल सको। इट इज नॉट ओनली कि इसको समझ आ जाए, टॉपर को आ जाए, क्योंकि वो होता है ना एक तरीके से जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मलाई में से मक्खन तो निकालना आसान है, आप दूध से निकालो। मतलब यू नो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर पे लेकर जाओ,
टॉपर तो मेरे को लगता है कोई भी टीचर उन्हें दे दो कैच देंगे। काफी इंस्टीट्यूट्स में जैसे ये प्रैक्टिस होती है कि आप ऑलरेडी एनटीसी या नाइन टेंथ क्लास में ओलंपियाड होते हैं, उन्हें को सिलेक्ट करके 11th 12th में 10 का बैच बना के अलग से पढ़ा के आप रिजल्ट निकाल देते हो, 10 बच्चों का न्यूज़पेपर में आ जाता है, फिर वो इंस्टीट्यूट 40,000 100,000 बच्चों को मां बाप को न्यूज़पेपर में वो चीज दिखाया, तो आपका बच्चा भी नहीं हो सकता, वो ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे भाई 1,000 बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से 2 का रिजल्ट निकाला हमने, पर वो 1,000 ही अपने आप में इतना बड़ा नंबर होता है कि वो रेशियो सिलेक्शन वालों का भी बढ़ जाता है, या उनके लिए हमने अलग अलग फिगर दी। जैसे आपको हमें पता है कि जो ऊपर की एकदम क्रीम है उसको तो चैप्टर वाइज भी इंडिविजुअल फैकल्टीज ला के दी जाएगी, 24/7 उसको टीचर सपोर्ट होगा। एक इंस्टीट्यूट में जानता हूँ वो लास्ट के टाइम में बच्चों को अलग ले जाते हैं होटल्स में, और टीचर्स भी वहीं रहते हैं, सीख लो क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मतलब पढ़ाने का पैसा दिया जाता है, उनके रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद उन्हें तोड़ने का पैसा है, तो
क्योंकि वो ग्लोरीफाई होता है
हाँ, उनका रिजल्ट क्योंकि अगले साल न्यूज़पेपर में वो आपने 25 बच्चे नहीं दिखाए फ्रंट पेज के ऊपर तो वो 25,000 बच्चे कैसे आएंगे आपके पास माँ बाप तो एक फिर तो मेरा ये मानना है कि एक पढ़ने वाला बच्चा जो ऑलरेडी छठी क्लास से दिमाग में लोग सोच के बैठा है कि मेरे को आरडी वाड़ी अगली क्लास से पढ़ के बैठनी है 2-3 क्लास एडवांस में चल रहा है और फिर वो कोचिंग आके सिर्फ वो मटेरियल ही कर रहा है क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ के बैठा है वो बच्चा स्कोर करता है तो ठीक है मुझे यूं लगता है उसके पेरेंट्स का ज्यादा रोल था उसमें और उस लड़के का खुद का रोल ज्यादा था टीचर्स तो कोई भी देते उसे आप ठीक ठाक अब एवरेज वो खींच के लेके जाता हाँ ये हो सकता है कि इनफैक्ट वो चीज भी नहीं है कि एक एवरेज बच्चे को उठाने में जो एनर्जी है वो आपको समझ पा रहा है वो एक एवरेज बंदा ही पकड़ पाता है कि यार मैं जब पढ़ता था मेरी ये दिक्कतें आती थी तो ये देखता होगा तो इसके भी आएंगे तो अब उस हिसाब से
मैं ये बच्चों से शेयर कर चुकी हूँ कि 11th में मैंने खुद मैथ ड्रॉप कर दिया था थिंकिंग यार नहीं उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे खुद डर लगता था बट somehow वो फिर एक तरीके से ले लिया गया क्योंकि शायद उस टाइम पे एक आ जाता था मैथ्स के बिना तो क्या ही कर लोगे करके तो ले लो एंड वो धीरे धीरे एक टीचर ही somehow यहाँ पर एक रोल मुझे समझ आता है आपके लिए किसी सब्जेक्ट को मेक या ब्रेक कर देता है एंड आई गेस फिर आई वॉज फॉर्चुनेट आई गॉट दोज टीचर्स की इंटरेस्ट बनने लगा और समझ आने लगा तो आई गेस आज जब मैं कहीं जाती हूँ पढ़ाने के लिए जब सेशन में तो मुझे होता है यार उस बच्चे को ये दिखाना है कि मैथ भूत नहीं है आप करो आप दिल से करके तो देखो तो वही मैं कहती हूँ ना क्योंकि मैं खुद शायद वहां से निकली हूँ तो मुझे लगता है एक बच्चा क्या फील कर रहा होगा कहाँ पे अटक रहा होगा एंड इसीलिए शायद जब मैं जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता कब 2 घंटे हो चुके 3 घंटे हो चुके 4 घंटे हो चुके हैं तो कई बार बच्चे बोलेंगे मैम बस अब ब्रेक तो वो शायद क्योंकि वही है ना कि अल्टीमेटली घूम के वही आ जाती है कि I always put that on my videos also, hard work. क्योंकि I believe in दिल से किया हुआ hard work. तो वो आपको फिर time का नहीं रहता पता कि कितना लग रहा है कितना समझ में आ रहा है So वो definitely चीज रहती है तो बिल्कुल
इसके अंदर अच्छी हुआ मसल भी आते हैं उन्होंने भी बच्चों को सिखाया था कि यार मैंने खुद इंजीनियर नहीं हूँ पर मैंने किताब कितनी देखा BSc करके मैं आगे बढ़ाऊँ आगे तो सेम चीज है आप पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड नहीं होता जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो 12th और कॉलेज तक नहीं है आपको कॉलेज के बाद भी हर दिन अपने आप को अपग्रेड इवॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैम ने कहा मैम आपको अपनी लाइफ में कौन से ऐसे बुक्स हैं या व्यक्ति हैं या फैमिली मेंबर्स में ही कोई अगर है या कोई बड़ी एंटिटी है जिसने आपको इन्फ्लुएंस करा है या आप रोज लुक अप टू करते हो या फिर ये बदलते रहते हैं या फिर हर डोमेन स्पेसिफिक बहुत सारे लोग हैं जैसे एच सी वर्मा सर ने कहा था उन्हें हवा भी मोटिवेट करती है पानी भी मोटिवेट करता है तो एक को क्रेडिट देना मुश्किल होगा आपका क्या
देखिए एक तो है कि शुरू से एक चीज़ है द फर्स्ट इन्फ्लुएंस हैज़ बीन माई फादर एंड ये इसलिए नहीं कि वो एक लाइन आती है ना पापा की परी हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं द पॉइंट इज जो उनसे सीखने वाली बात है कि यू शुड मतलब पहले ये बुकिश साउंड करती थी कि यू शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन नॉट रिएक्ट तो वो जो एक उनकी काम पर्सनैलिटी है ना कि जितनी भी टफ सिचुएशन हो जाए तो आज भी आई गेस जब कोई ऐसी सिचुएशन में मैं होती हूँ तो इट इज लाइक कि पापा यू कम क्योंकि पता है उनका प्रेजेंस ही बहुत कंफर्टिंग हो जाएगा चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाए वो चीज निकल जाएंगे हम वहां से सो एक वो एक काम पर्सोना डेफिनेटली मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है बाकी अगर मैं बात करूँ तो यस देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसको मैं बोल दूँ कि यार आई लुक अप टू सो एंड सो इट कीप्स चेंजिंग क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान में कुछ ना कुछ तो सीखने लायक है इनफैक्ट जैसे कई बार आप जब धीरे धीरे आपकी थोड़ी विजिबिलिटी बनने लगती है ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ कुछ लोग आपके बारे में कुछ गलत भी अगर कह देते हैं तो जब मैं उनको देख रही होती हूँ मेरा दिमाग वहां जा रहा होता है क्योंकि मेरा वो somehow एक नजरिया है कि यार वो तो ठीक है जो इसने कहा बट ये बोल कितना सही रहा है बट या फिर इसकी मतलब सब्जेक्ट नॉलेज देखो कितनी अमेजिंग है तो मुझे संभव लगता है कि मैं उस इंसान से सीख सकती हूँ क्या कुछ सो आई थिंक आई हैव दैट दैट फीलिंग विद मी कि हाँ यार हर इंसान से कुछ ना कुछ तो मैं लेकर जाऊंगी क्योंकि जो जहां पहुंचा है उसमें कुछ तो होगा एंड बुक की बात करें तो एक मैंने पढ़ी थी बुक वेयर हैज माई सीलिंग गॉन Which is शायद Warren and Sally करके कुछ ऐसी थी उसका मेन वो था कि जो हम लिमिट्स और बाउंडेशन सेट करते हैं वो हमारी खुद की होती है, है ना, कि हम सोच लेते हैं ये तो मेरी बस की नहीं है, ये तो मेरी, जैसे कहते हैं ना, औकात से बाहर है. बट धीरे धीरे आप देखते हो जब आप ही ये नजरिया बदलते हो, आप उसको पुश करने लगते हो, तो वेयर हैज माई सीलिंग गॉन, वो आपको खुद भी मतलब लगता है कि अच्छा ये मैंने ही खुद को रोका हुआ था, शायद मैं इस डोमेन में नहीं जा सकती. वो अपना ही माइंडसेट है, हम ब्लॉक कर देते हैं. इनफैक्ट अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी देखो तो ये होता है कि हमें लगता है यार ये पहले इंग्लिश सीख ले या हिंदी सीख ले या ये सीख ले, बच्चे के अंदर हमारे उसकी कितनी कैपेसिटी है, हम उसकी सोच को लिमिट कर रहे हैं. तो समहाउ दिस इज द थिंग जो मुझे बहुत सही लगी उस बुक से, कि यार हम ही डिसाइड कर लेते हैं कि भैया मेरी मेरे तो बस का इतना ही है, मुझे ये मिल जाए बस बहुत है. सो यस, वी विल ओनली हैव टू पुश आवरसेल्व्स.
मामा अभी अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, इन एजुकेशन देयर आर सेवरल एजुकेटर्स जो कि फ्री एजुकेशन रखते हैं,
right.
या फिर मान लो बहुत मिनिमल फीस रखते हैं, तो आपने कभी इसके पीछे एक तो रीजन क्या है, और उसके बाद मेरे से मल्टीपल क्वेश्चन है कि एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि ओके जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसके पास तो मोबाइल इंटरनेट है, वो कहाँ से, मतलब और भी गरीब बच्चे हैं जहाँ जिनके पास शायद मोबाइल और इंटरनेट ना हो, वो होने चाहिए फ्री एजुकेशन के. तो फर्स्ट, क्या आपने कभी सोचा वहां तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं? सेकंड, क्या आपको कभी लगा कि यार कुछ हमें फी रखनी चाहिए इस चीज के लिए तो हम और बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? ये दोनों चीजें
देखो, एक तो डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ मैथमेटिकली इंक्लाइंड की बात करूँ, तो हर दिन यहाँ पे मुझे पता है मैं यहाँ पर कुछ मॉनिटरी नहीं देख रही. मैं अगर यहाँ अपने सेशन में जा रही हूँ तो मुझे यह कि यार जितने मैक्सिमम बच्चों तक रीच आउट करा जा सकता है, तो आई गेस ये चैनल भी उसी माइंडसेट से सोचा था. क्योंकि होता क्या था, जैसे कि अब ओवर द इयर्स इतना देखा है कितने सारे बच्चे हैं जो आखिर के एक दो महीने में ही पढ़ रहे होंगे, या फिर मुझे लगता था कि बेसिकली क्या है, आप कहीं पढ़ाकर आ गए तो वो मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी कि आपने जितना भी अमेजिंग पढ़ा दिया, एक तो वो उन्हीं बच्चों तक रहा और बस वो खत्म हो गया. जैसे वो होता है ना वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी में कि बस मैसेज था आपके लिए, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म. तो कोई ऐसी एक इन्वेंट्री बनाई जाए जो कभी भी कहीं भी एक्सेस कर ले वो बच्चा. तो डेफिनेटली जिस तरह से आप इंटरनेट एंड इन सब की बात कर रहे हैं तो उसके भी प्राइसेस आई गेस काफी अफोर्डेबल हो चुके हैं विद मोर एंड मोर पीपल कमिंग इन. तो ये धीरे धीरे करके पेनिट्रेट कर रही है ये चीज की, हर बच्चे तक पहुंचा जा रहा है संभव. बाकी हाउ डू यू थिंक वी कैन टेक इट फर्दर, मतलब आपके दिमाग में क्या होता है?
दो तीन जगह पहले पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं. मतलब ठीक है, इंटरनेट अपने आप में काफी ज्यादा स्पीड से पहुंच रहा है लोगों में, अगर हम देखें पिछले दो तीन सालों में, स्पेशली 2017 के बाद एक्सपोनेंशियली हर लोगों के पास पहुंच रहा है, मोबाइल भी बहुत तेज पहुंच रहे हैं. पर फिर भी वो व्यक्ति जो मोबाइल ही परचेज नहीं कर सकता, कनेक्शन परचेज नहीं कर सकता, वहाँ पे हम कुछ इस प्रकार का सिस्टम कर सकते हैं कि आपने मान लो एक वैन रखी, आपको गांव अडॉप्ट करने पड़ेंगे बेसिकली. आपने एक वैन रखी, छोटी गाड़ी रखो, उसके अंदर एक छोटा टीवी आपने पीछे लगा रखा है, दो तीन आपने आईपैड्स वगैरह रख रखे हैं. अब ऑलरेडी गूगल से काफी सारे ऐप हैं जिसमें बच्चा अगर बोलता है राम आम खाता है तो वो हाईलाइट होता है, वो साथ साथ में बोलता है राम आम खाता है. तो आपको आप कुछ बनाने नहीं, डेवलपमेंट की कोई टीम नहीं चाहिए, आपको कुछ व्यक्ति चाहिए, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स, और उन्हें हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं बदले में. उन्हें फॉरेन जाना हो सकता है तो हो सकता है उन्हें सोशल कम्युनिटी सर्विस का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, और ऐसे बहुत बच्चे. तो उन्हें कहा कि यार एक दो महीने आओ, ये छोटे छोटे बच्चे होंगे, बस ये देख लेना आईपैड तोड़े ना, देख लेना कि इनको हाँ चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत पढ़ा देना, और इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट कर सकते. हाँ, उसमें फिर से आपको थोड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, राइट. और तभी मेरा मैंने सेकंड क्वेश्चन उससे अटैच किया था कि क्या मिनिमल एक फीस आपके दिमाग में आता है कुछ रखना चाहिए जिससे हम और लोगों तक रीच आउट कर सकें? एंड आई गेस उसका आंसर शायद हाँ, अगर आप जलता हुआ दिया ही दूसरे दियों को जला सकते हैं.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो कुछ तो, क्योंकि हर चीज की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती है, मतलब हम जितना मर्जी वो फ्री वो कर दें बट कहीं ना कहीं तो कॉस्ट आप पर आती ही है. तो जितनी आप क्वालिटी बेटर करना चाहते हो कुछ ना कुछ तो उसको फिर रखना पड़ेगा.
मैम, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज?
स्टूडेंट्स के लिए आई गेस सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि यार लाइफ को ना बैलेंस करके चलो, क्योंकि आपके हर दिन में जैसे जैसे आप आगे भी बढ़ोगे वो शायद एक थोड़ा सा रहता है कि बस आज पढ़ लो फिर कल शायद ऐश ही ऐश है, वो ऐसा नहीं है। लाइफ एक बहुत बैलेंस तरीके से आपको चलनी है, जहां पर आप जो भी कर रहे हो वो दिल खोल के करो। जैसे मैं उनको बोलती हूँ अगर आप सुबह उठ गए हो, आपने 4-5 घंटे पढ़ लिए हैं मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ लिए हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये मेरी बुक्स है, ये मेरा मोबाइल है और यहाँ पढ़ाई हो रही है, वो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो आप कर रहे हो उसको पूरा दिल से पूरे शिद्दत से करो, ताकि जब आप फिर इंजॉय करने जा रहे हो वो भी गिल्ट फ्री हो। तो इस बैलेंस को डेफिनेटली बना के चलना है। और जो भी बेसिकली कभी भी अगर आप कहते हो कि यार सोचो मत कि मैं ये कर लेता या वो कर लेता, स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट। हाँ मुश्किलें आएंगी, वो रोड ब्लॉक्स भी आएंगे, लेकिन वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे। सो डेफिनेटली इस तरह से करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जो भी चीज करते हो उसको उसमें परसिस्टेंस दिखाओ, है ना, तभी आपको धीरे धीरे करके मतलब वही वो होता है ना, जैसे वो एक बैम्बू का पेड़ होता है वो दिखता है आपको कि यार वो उसमें तो हल्के हल्के छोटे छोटे से शूट्स निकलते हैं इनिशियली 4-5 साल में, तो आपको लगता है पता नहीं इससे तो क्या ही मिलेगा। मतलब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मत बह जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रहता है। तो यू नो कई लोगों का कि यार इंस्टेंटली मेरे को वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे कि चैनल खोला इंस्टेंटली व्यूज नहीं आ रहे, इंस्टेंटली सब मतलब, अब मैं फिर से वही घुमाकर एक लेकर जाऊंगी अपने उस पे, मैंने वो टाइम देखा है कि हफ्ते में शायद 10 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते थे, या फिर ऐसा होता था मैं सोचती थी इस वीडियो पे 100 व्यू आ
जाए, नेगेटिव में जा रखे -15 ऐसे ऐसे।
अच्छा वो होता था कि यार 100 व्यू भी आ जाएंगे ना हम अगली वीडियो डालेंगे, वो ऐसे वाले से, तो वो इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो बैम्बू प्लांट फिर बढ़ेगा तो वो फिर सीधा आपकी सालों की मेहनत दिखाएगा। तो परसिस्ट करो एंड लगे रहो, दैट इज द थिंग।
तो आज का जो सेशन है इसमें हमने मैम से काफी सारे सवाल पूछे, और शुक्रिया मैम यहाँ पे आज सभी बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। और आखिर में यार वही चीज है, एक सपना लेना होगा आपको काफी बड़ा, जो कि वर्थ हो, कि एक वर्थ वाइल कॉज है जिसके लिए अपन अपना जीवन लगा सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 डू इट नाउ, आज शुरू करना पड़ेगा आपको। स्टेप नंबर 3 बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। अब इसमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स मसाले ऊपर से डालते हैं, वो अपने आप में समहाउ यूनिक होना चाहिए, ठीक है, दुनिया मना करे तब भी आपको उस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो आप ये कर सकते हो जो अपने कॉलेज में कर रहे हो, वो चीज पढ़ते रहो, प्लेसमेंट का दिन के 2-3 घंटे देते रहो, वो 2-3 घंटे जब आप 3 साल बाद देखोगे तो काफी सारे घंटे हो जाते हैं और आप एक उस डोमेन में काफी आगे आ रखे होते हो। छोटी सी चीज है, आप किसी भी प्रोफेशन में 5 किताबें पढ़ लेते हो तो आप आई गेस 99% लोगों से ज्यादा नॉलेज रखते हो सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बाकी मेजोरिटी लोग 5 किताबें नहीं पढ़ते। तो इसी के साथ यार आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।